नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल के नेटवर्क पर 5G ग्राहकों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। कंपनी ने सोमवार को बयान में ये जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि वो मार्च 2024 के अंत तक सभी कस्बों और महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों तक एयरटेल 5G सेवाएं पहुंचाने के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी ने बताया कि उसके नेटवर्क पर 5G कनेक्शन की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। नवंबर 2022 में एयरटेल पहली और एकमात्र परिचालक थी जिसके नेटवर्क पर 5G की वाणिज्यिक शुरुआत के बाद ग्राहकों की संख्या 30 दिन में 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी। उल्लेखनीय है कि देश में द्रुत गति की 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी। एयर इंडिया में व्यापक संभावनाएं हैं और समूह को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बनाने के प्रयास जारी हैं। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने सोमवार को ये बात कही। विल्सन ने मीडिया को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि एयर इंडिया के साथ विस्तार के एकीकरण की प्रक्रिया जारी है और अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी का इंतजार है। विल्सन ने कहा कि हाल ही के समय में उड़ान के दौरान यात्रियों के खराब बर्ताव की घटनाओं के बाद एयरलाइन ने अपनी शराब पिलाने की नीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन में इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा किसी यात्री के नशे में होने की पहचान के लिए शराब नीति में इस तरह की घटनाओं की जानकारी और कार्रवाई को लेकर बदलाव किए गए हैं। लगभग रोज इस तरह के मामले आते हैं। इसकी वजह यह है कि यात्री ने विमान में सवार होने से पहले ही शराब पी होती है। अब इस तरह के मामलों की अधिक जानकारी दी जा रही है। हम ऐसे मामलों में सख्त कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट के एकीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। उत्तर प्रदेश अगले वित्त वर्ष में 3.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के बावजूद 2.8% के राजस्व अधिशेष के बजट लक्ष्य को बड़े अंतर से चूक सकता है। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि इसी सप्ताह पेश किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में GSDP वृद्धि और राजस्व के संबंध में कई बढ़ चढ़कर अनुमान लगाए गए हैं, जहां आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। वहीं राजस्व अधिशेष का बजट लक्ष्य आधा ही रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर 2005-06 से अपनी राजस्व अधिशेष की स्थिति को कायम रखा है। अगर कोई राज्य ऊर्जा वितरण और विशिष्ट क्षेत्रों में लक्षित सुधार करते हैं तो केंद्र सरकार उसे उसके GSDP का 3% और अतिरिक्त 0.5% कर्ज लेने की अनुमति देता है। चालू वित्त वर्ष की संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य का राजस्व अधिशेष सुधार के साथ 2.6% या 53,907 करोड़ रुपए हो गया है। इसका बजट लक्ष्य 2.1% या 43,124 करोड़ रुपए था। किफ़ायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन स्पाइसजेट ने पट्टे पर विमान देने वाली कंपनी कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स के बकाया $10 करोड़ को इक्विटी शेयरों और अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर में पुनर्गठित किया है। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि उसके निदेशक मंडल की बैठक में कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स को $2.95 करोड़ मूल्य के शेयर 48 रुपये प्रति शेयर या सेबी द्वारा तय भाव जो भी ऊंचा है पर जारी करने की मंजूरी दी है। इस लेनदेन के बाद कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स के पास स्पाइसजेट की 7.5% इक्विटी हिस्सेदारी होगी। कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स कार्लाइल के $143 अरब के वैश्विक ऋण मंच की वाणिज्यिक विमानन निवेश एवं सेवा इकाई है। कंपनी ने कहा कि कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स द्वारा हमारे यात्री और कार्गो कारोबार में हिस्सेदारी के अधिग्रहण से स्पाइसजेट और स्पाइस एक्सप्रेस की व्यापक क्षमताओं का पता चलता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैदराबाद में मंगलवार को होने वाले एक भव्य स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तेलंगाना सरकार और उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ये सम्मेलन अपने विचारों और नेटवर्क को साझा करने के लिए उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान और एल मुरुगन, साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री टी श्रीनिवास यादव इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। पूर्व नौकरशाह शैलेश पाठक को उद्योग मंडल फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। फिक्की ने सोमवार को ये जानकारी दी। फिक्की ने एक बयान में कहा कि पाठक 1 मार्च को प्रभार संभालेंगे। फिक्की ने कहा, अपने 37 साल के करियर में पाठक ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में सरकार के साथ काम करने के अलावा निजी क्षेत्र की कई कंपनियों में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है। फिक्की ने कहा कि उसके महानिदेशक अरुण चावला 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसके बाद वो सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 82.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने तथा घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख की वजह से निवेशकों की धारणा प्रभावित होने के कारण रुपए में गिरावट आई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।